सभी श्रोताओं को और शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। आज चुनाव किया गया है टॉपिक का, वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस। हमने पिछली बार भी हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में बात करी थी कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है। मैं दोहरा देती हूँ, जो भी हमारे शरीर का और जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो शरीर में कई तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं। वो किस स्थिति में है, उनके स्थिति का जो मापन होता है उसको हम न्यूट्रिशनल स्टेटस कहते हैं। ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका डाइटरी इनटेक क्या है और आपकी बॉडी किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, अब्सॉर्ब कर रही है या यूटिलाइज कर रही है, हम छोटे शब्दों में कहें तो। इसको नापने के भी कई सारे तरीके हैं, मगर हम यहाँ पर सिर्फ तीन तरीके के विषय में चर्चा करेंगे। पहला हम लेंगे मेजरिंग द ग्रोथ। सिर्फ मैं ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ग्रोथ जुड़ी हुई है आपकी फिजिकल बॉडी मेजरमेंट्स के साथ, जिसमें मेनली हम बात करते हैं हाइट, वेट और साथ साथ हम कई बारी जब और आगे बात करते हैं तो हम बॉडी सर्कमफ्रेंसेस के बारे में भी बात करते हैं, यानी कि बॉडी के विभिन्न हिस्सों की गोलाई कितनी है और एक दूसरे से प्रोपोर्शन कितना है, उससे भी हमको एक आइडिया लग जाता है कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। और टेक्निकली इसको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स भी बोलते हैं, जो आप आगे आने वाले समय में इस शब्द का भी प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, बॉडी वेट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके पास सिर्फ वेइंग स्केल होनी चाहिए जो सही काम करती हो। और बच्चों के लिए जो है वेइंग स्केल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप सोच सकते हैं कि छोटा बच्चा जो है एक साल का भी या दो साल तक जो जनरली बच्चे होते हैं वो खड़े नहीं हो पाते हैं सीधे, तो या तो ये है कि जो ख़ास तौर से जब कम्युनिटी में जाते हैं या उस जगह से, तो एक दो तरीके होते हैं, या तो डॉक्टर उनको उनके पास एक स्पेशल तरीके का वेइंग बैलेंस होता है और दूसरी तरीके और उस पर वो लिटा के वज़न ले लेते हैं। दूसरा जो है उसमें होता है कि मदर और बच्चा दोनों लोग वेइंग स्केल पे खड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे को उतार देते हैं और फिर खाली मदर हो जाते हैं, दोनों को माइनस करके हमको बच्चे का वज़न मालूम हो जाता है। तो ये तरीका हुआ। और आपकी किताब में भी कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड हाइट एंड वेट लिखे हुए हैं जो कि आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा भी हाइट मेजर कर सकते हैं। हाइट के लिए कोई बहुत बड़ा हमें नहीं करना, मगर सीधी लकीरों के साथ आप मार्क किसी भी दीवार पर कर सकते हैं, जिसमें इंच टेप भी ले सकते हैं, स्केल भी ले सकते हैं, और कुछ जगहों पे डॉक्टर्स के यहाँ कुछ बने बनाए स्केल्स जो होते हैं जिसपे व्यक्ति को या बच्चों को खड़ा होके आप ऊपर से सर के ऊपर से स्केल को बंद कर देते हैं, फिर मेजर कर लेते हैं कि, और हाइट जो है हम इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, और वज़न को हम केजी में वज़न करते हैं और कुछ देशों में पाउंड्स में भी वज़न लिया जाता है। तो और शुरू शुरू में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, मगर जैसे जैसे उम्र अलग होती जाती है, ख़ास तौर से 8-9 साल के बाद लड़के लड़कियों की वज़न में भी काफ़ी डिफरेंस देखा गया है। लड़कियाँ जनरली कम वज़न की होती हैं और लड़के जनरली ज़्यादा वज़न के होते हैं, क्योंकि दोनों के बॉडी कंपोजिशन मसल्स के वेट में काफ़ी डिफरेंस होता है। लड़कियों में थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है और लड़कों में थोड़ा सा मसल्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा वज़न में भी अंतर आता है। तो ये तो स्टैंडर्ड की बात हुई, मगर स्टैंडर्ड्स का महत्व सबसे ज़्यादा ये है कि अगर ये स्टैंडर्ड्स हैं तभी आप जान सकते हैं कि आपका वज़न उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा है या कम है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर उम्र के हिसाब से वज़न होता है और हाइट होती है, और हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, कुछ हमारे इंडियन ने भी कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स बनाने वाली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत मेहनत करके एक नतीजे पर पहुंचती हैं, और काफ़ी सारे पॉपुलेशन हज़ारों की संख्याओं में उन लोगों का वज़न लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों में, तब जाके एक कंसेंसस यानी कि एक मापदंड तैयार किया जाता है कि भाई ये चीज़ मानक जो है इस उम्र के लिए हाइट का और वज़न का ये हो सकता है अगर इससे ज़्यादा है या कम है तो व्यक्ति हेल्दी है या अंडर नरिश्ड है या ओवर नरिश्ड है, ये भी इससे मालूम चल जाता है। और इसके तहत हमारे जो नेशनल इंडिकेटर हैं वो भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज और वेट फॉर हाइट और हाइट फॉर वेट हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद तय करते हैं कि भाई हमारे हिंदुस्तान में या किसी कम्युनिटी में कितने लोग मालनरिश्ड हैं, कितने अंडरवेट हैं, कितने वेस्टेड हैं, कितने स्टंटिंग हैं, छोटे हैं, कितने मालनरिश्ड हो गए, अंडर नरिश्ड हो गए, इन सब से फिर आगे मालूम चलता है कि उनके लिए क्या चीज़ वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। क्योंकि वज़न खाली अपने आप में इतना अच्छा इंडिकेटर है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि सबसे आसानी से मालूम चल जाता है
जी।
मगर छोटे छोटे जो बदलाव आपके खाने में आते हैं, एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि सपोज एनर्जी, और ये ध्यान में रखिए एनर्जी और पोषक तत्व, मैं शुरू से आपको इस बारे में जानकारी दे रही हूँ, ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं।
ओके,
एनर्जी अलग है जो कि आपके तीन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से मिलती है, तब एनर्जी कैलकुलेट होती है। तो एनर्जी देने वाले पदार्थ अलग हैं, पोषक तत्व देने वाले पदार्थ अलग हैं। एनर्जी तो आप चीनी में पानी में घोल लीजिए, आपको एनर्जी मिल जाएगी, मगर उससे पोषक तत्व आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उसी के कंपैरिजन में अगर आप दूध पीते हैं तो उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और पोषक तत्व भी मिलेंगे, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर इसलिए ये जानना बहुत अति आवश्यक है कि आपकी कई बारी एनर्जी तो पूरी हो जाती है मगर पोषक तत्व आपके बहुत कम रह जाते हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन में भी डालें, हम जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करें कि भाई इस खाद्य पदार्थ में इतनी एनर्जी मिल रही है, और कई बारी आपको अंदाज़ा भी नहीं आता है कि आपको उस एक बिस्किट से 50 कैलोरी मिल गई, एक चम्मच आपके घी से भी आपको 50 कैलोरी मिल गई। तो अगर आप समझ लीजिए कि एक बिस्किट खा रहे हैं, एक चम्मच घी खा रहे हैं या आप 2.5 चम्मच चीनी खा रहे हैं, कैलोरी लगभग सबकी बराबर है। एक चपाती में ही आपको 70-80 कैलोरीज मिल जाती हैं। तो कैलोरी का एक अलग मापदंड है, मगर ये पूरा पक्का मापदंड नहीं है कि हम ये तय कर लें कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अच्छा होगा। तो क्या करें? तो हमको डाइटरी इनटेक, जैसे मैंने कहा ना, हम मापदंड के तरीकों के बारे में आज बात करेंगे। तो डाइटरी इनटेक का मतलब कि आप रोजमर्रा क्या क्या खाते हैं उसको हम नोट करते हैं, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, फिर तय करा जाता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट आपको आवश्यक है वो उससे ज़्यादा है या कम है। तो किस तरीके से करते हैं? अब खाना तो हम रोज खाते हैं, तो क्या हम रोजमर्रा हम उसको लिखेंगे? तो उसके लिए क्या करा जाता है, इसके लिए भी अलग अलग छोटे छोटे मेथड हैं। यहाँ पर हम सिर्फ दो मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, और उसको ध्यान से सुनिए हम किस तरीके से काम करते हैं, और ये आपकी किताब में भी अच्छे से दिया गया है। पहले को हम कहते हैं 24 आवर्स रिकॉल मेथड, यानी कि पिछले 24 घंटों में आपने क्या क्या खाया है, जो भी सॉलिड खाया है, जो भी आपने लिक्विड खाया है, उसका अमाउंट हम नोट करते हैं। अब आप कई बारी ये प्रॉब्लम आती है, हमको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि हमने कितना खा लिया, तो इसलिए आपको बैठ के याद करना होता है कि कल सुबह उठने के बाद, कल सोने के बीच में आपने क्या क्या खाया था। और पता लगता है उससे कि भई आप बात तो सिर्फ 4 मील की कर रहे थे, मगर बीच में हमने जो 4-5 बिस्किट खा लिए थे, जो पड़ोसी ने मुझे मिठाई खिला दी थी, कहीं बाहर जाके जो मैं समोसा खाया आया था वो तो मैंने याद ही नहीं करा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहीं से हमारा डाइटरी पैटर्न समझ में आता है, रिकॉर्ड होता है, और जब आपका वो रिकॉर्ड हो जाता है तब आपको अंदाज़ा आता है कि हमने कितना खाया। भाई थोड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी और देना
जी।
तो आपकी रिक्वायरमेंट तो 1 चम्मच की थी, मगर आप कब 2 कटोरी खा गए आपको पता ही नहीं चलता है। और ये जब आप रिकॉर्ड करते हैं उसका असर से आपको मालूम चलता है कि आपने कितना खाना खाया। और कई बार लगता है हमको भूखी नहीं लग रही है, पूरा पूरा दिन आप काम में मगन हैं, आपने खाना ही नहीं खाया, और इस बात को भी कई कई दिन हो जाते हैं, तो वो हमको पुअर नरिशमेंट देता है। और कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं तो वो ओवर नरिशमेंट देता है। मगर ये इससे हमको अगर फ्रीक्वेंटली इस तरीके को अपनाया जाए तो हम स्वयं भी अपने खान पान के पैटर्न को, उसकी प्रक्रिया को, अमाउंट को, और उससे भी ज़्यादा हम क्या फूड प्रिपरेशन खा रहे हैं उसका भी अनुमान हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड और करना चाहूँगी। अब कल आपने खाया तो हो सकता है आपके यहाँ त्यौहार था, आप किसी दावत में गए थे, या आपका समय नहीं मिला था, आपने खाना नहीं खाया था प्रॉपरली। तो दोनों ही अवस्था में वो आपका 24 रिकॉल बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। तो दिन चुनने में भी हमें ध्यान रखना होता है, जब हम किसी के पास जाते हैं कि भाई हमको आपको डाइटरी एडवाइस देनी है, तो एडवाइस देने से पहले हम 24 रिकॉल मेथड का यूज़ करते हैं और वो दिन चुनते हैं जब ना तो ज़्यादा किसी कारण से खाया गया हो, ना किसी कारण से बहुत कम खाया हो, जो ऑन एंड एवरेज उसकी रोज़मर्रा की खान पान या आहार की प्रक्रिया है, या जो भी उसके पैटर्न है, चाहे वो 6 बारी खाना खाते हों, चाहे 2 बारी खाते हों, उसका हम अनुमान आसानी से लगा पाते हैं। और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इच्छुक है, या बीमार है, या मैल नरिश्ड है, तो आप लगातार एक हफ्ते का भी 24 रिकॉल ही कहलाता है, क्योंकि हम पहले दिन का, अब आप मुझसे या स्वयं से भी पूछेंगे कि आपने पिछले संडे को क्या खाया था, सुबह उठने से रात तक तो हो सकता है याद ना रहे। तो इसलिए तरीका वही है कि आप एक चार्ट बना लीजिए, उसको आप सुबह से उठकर जितने भी मील हैं रोज़मर्रा उस वीकली चार्ट में भर लीजिए, और एक वीक में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका खाने का पैटर्न क्या है। हमारे यहाँ इस चर्चा में बहुत बारी बात हुई है कि हमारा डाइटरी पैटर्न खराब हो रहा है, मगर फिर भी हम कर कुछ नहीं रहे हैं
जी।
हम चाहते ज़रूर हैं कि हम उसको सुधारें, मगर फिर हमारे बहुत सारे कारणों से हम उसी ढर्रे पे चलते रहते हैं। और ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है कि सिर्फ आपको एक चार्ट बनाना है, एक या दो पेपर पे बन जाता है आसानी से, आप उसमें कॉलम करके भरते जाइए। सिर्फ एक हफ्ता आप मेहनत करेंगे तो इससे क्या होगा, आप स्वयं भी कॉन्शियस हो सकते हैं। और ये उनके लिए भी है जो बड़ी बड़ी स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी 24 रिकॉल मेथड लार्ज पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए बहुत आसानी से काम हो जाता है उसमें। तो इसमें क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इस बारे में भी थोड़ी। लाभ सबसे है कि भाई बहुत आसानी से हमें इसमें फूड आइटम्स का पता चल जाता है, कितना खाया है वो पता चल जाता है, और फिर हमको ये भी पता कि कम समय में हम ज़्यादा लोगों का पैटर्न इस्तेमाल कर लेते हैं। नुकसान ये है कि उससे हमको फूड के अंदर क्या है वो हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, या ओवरऑल हमारा जो पैटर्न है पूरे महीने का या पूरी उम्र का, उसका अंदाज़ा हमें इस तरीके से कम मिल पाता है। तो फिर क्या करें? तो एक और तरीका है हमारा, जिसमें हम जान चाहते हैं कि फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर कहते हैं उसको, या FFQ के नाम से भी पूरे वर्ल्ड ओवर में ये बहुत पॉपुलर मेथड है। उससे आपके खाने की फ्रीक्वेंसी, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी चार्टिंग करते हैं, लगभग एक लिस्ट बना लेते हैं सब प्रकार के खानों की। एक लंबी सी लिस्ट होती है जिसमें आपके फूड प्रिपरेशन चपाती से लेके आपकी स्वीट्स भी उसके अंदर आ जाती हैं। फिर आप उसमें डेली, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 4 दिन, कभी कभी 15 दिन में, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है आप रोज़मर्रा खाएं, मगर कभी कभी आप खाते हैं, तो उसमें आप उनको टिक मार्क कर लेते हैं। ओवरऑल आपको पैटर्न पता लग जाता है कि आप रोज़ क्या खाते हैं, हफ्ते में क्या खाते हैं, 15 दिन में क्या खाते हैं, वीकेंड या फंक्शन में क्या खाते हैं, और कभी कभी क्या चीज़ आप पसंद करते हैं। अब ये कैसे तय करें कि हम खाना सफिशिएंट खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये भी तो तय करना आवश्यक हो जाता है
जी।
तो हमारे यहाँ एक नेशनल लेवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उन्होंने हमें कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि आपको कौन सा भोजन कितना करना चाहिए। तो मैं आपको एक बैलेंस्ड डाइट अडल्ट मेन और अडल्ट वुमेन की बताने की कोशिश करूंगी। तो इसमें सबसे पहले हम सीरियल्स की बात करते हैं, जिसमें आपने अभी तक सीख चुके होंगे कि इसमें सभी प्रकार की रोटी, चावल, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो यानी कि एक अडल्ट व्यक्ति को एक सर्विंग जो है वो 30 ग्राम की मानी गई है इसमें, और लगभग 10 से 14 सर्विंग पर डे की आवश्यकता है। यानी कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो कितना निकलेगा आपको, 300 ग्राम 400 ग्राम के आसपास अनाज की ही एक पुरुष को, अडल्ट को जो ऑफिस में बैठता है उसकी आवश्यकता है। हम सेडेंटरी वर्कर की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑफिस से आपको बहुत आसानी से समझ आ सकता है। और 30 ग्राम इस नतीजे से लिया गया है कि लगभग एक रोटी मोटी होती है, बड़ी होती है, जो जनरली हमारे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाती है, जो छोटी होती है थोड़ी सी वो डेढ़ रोटी बने, तो 30 ग्राम गेहूं में हमारी लगभग एक रोटी आ जाती है। तो हाँ हिसाब, और इसके बदले में भी हमने पहले भी चर्चा करी थी, तो ज़रूरी नहीं है कि हम रोटी ही खा रहे हैं, उसके बदले आप चावल भी खा सकते हैं। आधी कटोरी चावल और एक रोटी लगभग बराबर का नरिशमेंट देती है। फिर दूसरे हिस्से में आते हैं कि हम चार सर्विंग, जब मैं सर्विंग की बात कर रही हूँ तो उसका एक मापदंड है हर एक प्रकार के खाने के लिए। तो एक सर्विंग का मतलब है 100 ग्राम, चार सर्विंग होगी यानी कि 400 ग्राम सब्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है, आलू भी हो सकता है उसमें, आपकी अदर वेजिटेबल्स यानी कि लौकी, टिंडा, परवल भी हो सकता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो पालक मेथी के अंतर्गत आती है, यानी कि 400 ग्राम सब्जी की आवश्यकता आपके शरीर को है। फिर एक सर्विंग फल की है जो कि 100 ग्राम के बराबर है। फिर हम आते हैं दालें, हमारे देश में दालों का प्रचलन काफ़ी है, खासतौर से जो वेजिटेरियन लोग हैं, तो 30 ग्राम दाल का एक सर्विंग होता है और दो सर्विंग की आपकी आवश्यकता है, खासतौर से जो लोग वेजिटेरियन हैं, तो 60 ग्राम दाल आपकी रोज की आवश्यकता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो 30 ग्राम का एक सर्विंग रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि एक सर्विंग आप दालों की खाएं और एक सर्विंग नॉन वेजिटेरियन की खाएं। इसके अलावा जो दूध या दूध से बने पदार्थ हैं उसको भी आपको एक सर्विंग बराबर होती है। अगर लिक्विड मिल्क ले रहे हैं तो 100 ग्राम की, दही 100 ग्राम का, मगर अगर पनीर ले रहे हैं तो 30 ग्राम काफ़ी है। तो उस तरीके से आपको कैलकुलेट करके बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। मगर अब आपकी जो यहाँ पे जो मेजर चर्चा है रहती है, कहाँ पे हमारा खान पान बिगड़ता है, चूँकि आपको चार सर्विंग सिर्फ तेल की अलाउड है और एक सर्विंग सिर्फ 5 ग्राम का होता है, यानी कि सिर्फ 4 चम्मच तेल आपको पूरे दिन में आवश्यकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मगर हम ये कई गुना बढ़ा लेते हैं और अनाज हम कई गुना कम कर देते हैं, तो हमारा पोषक स्तर पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। चीनी की आवश्यकता भी है आपको, और 5 सर्विंग की आवश्यकता है और एक सर्विंग आपकी 5 ग्राम की होती है, यानी कि 25 ग्राम चीनी आप रोज ले सकते हैं, बशर्ते आप रोजमर्रा की आपका जो जीवन है वो 8 घंटे काम करने के लिए हो, 8 घंटे मीडियम एक्टिविटी हो और 8 घंटे आपका रिलैक्सेशन हो, तब इतनी मात्रा आपको चाहिए होती है। इसी तरीके से जब हम वुमेन की बात करते हैं तो आपको सीरियल्स भी बराबर चाहिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी बराबर चाहिए और बाकी सब चीज़ें भी लगभग बराबर की आवश्यकता होती है। मगर महिलाओं को चीनी भी थोड़ी सी कम चाहिए और अनाज भी अगर थोड़ा कम कर लेंगे और सब्जी भी एक कम कर लेंगे, मगर उस एक सब्जी में कम करने में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत एसेंशियल है। इसी बेसिस पर हम ये तय करते हैं कि किसको कितनी आवश्यकता है और फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो खाना को डिजाइन करें। हाँ जी, तो अभी आप सुन रहे थे कि आप जो पोषक स्तर है किस तरीके से नापा जाए। आपने दो मेथड सुने कि हम बॉडी वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से मेजर कर सकते हैं, डाइटरी इंटेक से, और किस तरीके से उसको माइनर चीज़ों को हमने समझाने की कोशिश करी, और कंपेयर कैसे करा जाए कि आप इतना ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो ये रिकमेंडेड हो गया आपका। अब तीसरा जो तरीका है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस को रिकॉग्नाइज करना। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हो जाती है, कैसे तय करें कि आपको प्रोटीन की कमी है। तो कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं हर चीज़ के, तो जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं। और आजकल बहुत आसान ब्लड प्रोफाइल से भी बहुत कुछ मालूम चल जाता है, एनीमिया जो है आप सिम्टम्स से भी, मगर जब आपको सभी लोग तो ब्लड प्रोफाइल नहीं कराते हैं या कम्युनिटी में हम ब्लड सैंपल्स नहीं लेते हैं, तो हम सिर्फ ये जानकारी पहचान कर सिम्टम्स की ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन से पोषक तत्व की हमें कमी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटीन की और एनर्जी की कैसे कमी पहचाने। इसको जनरली जो पूरे हिंदुस्तान में या बाहर के देशों में भी एक नाम दिया गया है वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। छोटी से हम PEM के नाम से भी पॉपुलर है, और इसका मतलब है कि एनर्जी की भी कमी है और प्रोटीन की भी कमी लगभग साथ साथ होती है, और कुछ स्थितियों में एनर्जी कम नहीं होती है मगर प्रोटीन बहुत कम हो जाती है। और सबसे आसान तरीका प्रोटीन कम होने का होता है कि आपको स्वेलिंग बढ़ जाती है, खास तौर से पेट बहुत मोटा हो जाता है बच्चों का, मुंह पे सूजन भी आ जाती है, और हाथ पैर बहुत पतले पतले रह जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो बच्चे को जो है प्रोटीन की कमी है, और थोड़ी सी एनर्जी की कमी भी होती है। मगर इसमें जब हम खाने का असेसमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है। कुछ जगहों पर शुरू से ये देखा गया है कि बच्चों को दाल चावल ना देके सिर्फ चावल चावल दे दिया जाता है। इवन ये कमी सिर्फ बच्चों में ही नहीं पाई गई, बड़ों में भी आजकल देखने को मिलती है। फिर आप सोचते हैं कि भाई क्यों सूजन हो रही, क्योंकि हमारे ये बहुत सारे रिसर्चेस से मालूम चल चुका है, एस्टैब्लिश हो गया है कि हमारे हिंदुस्तानियों में प्रोटीन की अक्सर कमी होती है, और धीरे धीरे प्रोटीन पचाने की जो क्षमता है वो भी हमारे कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जो आप खा रहे हैं वो हमारे शरीर को इतनी कैपेसिटी कम हो गई कि वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और उसके बाद जो है हमारे अलग अलग सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कुछ शुरू में हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला है कि एडिमा। एडिमा का मतलब होता है कि शरीर के जगह जगह जो टिश्यूज हैं उनमें पानी इकट्ठा या फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं एडिमा। और जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। और PEM को हम दो भागों की नज़र से भी देखते हैं, एक को हम कहते हैं कोश्योरकर, KWASHIORKOR, जिसमें हमारी प्रोटीन की कमी ज़्यादा होती है, एनर्जी की कमी कई बारी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो जाती है, तो उतनी ज़्यादा कमी एनर्जी की नहीं होती है। दूसरी स्थिति को हम कहते हैं मरास्मस, ये थोड़े टेक्निकल नाम है, MARASMUS, इसमें एनर्जी भी कम होती है प्रोटीन भी कम होता है। चलिए दोनों को कैसे तय करें, जैसे मैंने आपको बताया कि किस अवस्था में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो कोश्योरकर में हमारी प्रोटीन की कमी ज़्यादा होती है, और जनरली ये छोटे बच्चों में होता है, और ख़ास तौर से जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो पहले का आहार उतना नहीं ध्यान दे पाते हैं और दूसरे को बहुत जल्दी कमी हो जाती है। सो एक से तीन साल के बच्चों में ये काफ़ी देखा गया है। एडिमा मैंने सबसे पहले बताया कि पेट फूल जाता है, उसको भूख भी नहीं लगती या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उसका मतलब उसका लिवर भी अफेक्ट हो जाता है, का और स्किन पे उसके दाग पड़ने लगते हैं, लाल लाल हो जाता है और छिलके सी उतरने लगती है जो, और बाल जो हैं जगह जगह से सफ़ेद, जगह जगह से काले ऐसे हो जाते हैं। लिवर मैंने आपको बताया कि एनलार्ज हो जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत अवस्था में जो मरास्मस है, इसमें हमने बताया आपको प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, और ये जनरली और छोटे बच्चों में भी देखा गया है, क्योंकि जनरली हम ब्रेस्ट मिल्क भी पूरा नहीं देते हैं और उसके ऊपर से जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड उस 6 महीने के बाद जो अति आवश्यक है वो भी हम इग्नोर कर देते हैं, और उसको भी अगर देते हैं तो कभी कभी, और इस अवस्था में उसकी स्किन तक लूज पड़ जाती है, यानी कि मसल्स डेवलप ही नहीं होते हैं और ना ही उसके अंदर नीचे जो स्किन के अंदर फैट होता है वो भी नहीं होता, तो बिल्कुल झूले जैसी स्किन हो जाती है, पेट अंदर घुस जाता है, बिल्कुल मंकी जैसा फेस, इसको हम कहते हैं मंकी जैसा फेस, और डायरिया बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो यानी कि ये एक विशेष साइकिल बन जाता है कि हम डायरिया हुआ, फिर खाना नहीं दिया, फिर वो और ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई तो फिर डायरिया हो गया, या और को भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यानी किसी को मलेरिया हो जाता है, किसी को गला ख़राब हो जाता है। तो ये एक विशेष साइकिल है, क्योंकि दोनों ही केस में हमारी इम्यूनिटी, जो हमने पहले भी बताया था, प्रोटीन ही है जो आपके एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है, तो वो सब हमारी कम होने लगती हैं। तो अभी हमने जो चर्चा करी, तो इससे हमको मालूम चलता है कि हमारे को माल नरिशमेंट है या इस पोषक तत्व की कमी है। तो वो पोषक तत्व जब हम देते हैं तो वो कमी जो हमारी पूरी हो सकती है। दूसरी और एक जो जटिल समस्या है वो है हमारी विटामिन ए डेफिशिएंसी। सभी लोग जानते हैं विटामिन ए के बारे में, और सीधे सीधे सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो आंखों को लाभ देता है, और लाखों बच्चे हमारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंड होते हैं हर साल। तो उसको बचाने के लिए कैसे पहचाने? सबसे पहले तो जो हमारा बच्चा है वो बार बार कंप्लेन कर रहा है कि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मगर हम फिर भी कुछ नहीं करते हैं। स्कूल में जाता है तो भी उसको ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता, कभी किसी आप घर में भी किसी दूसरे कमरे में भेज दीजिए तो वो जल्दी से चीख जाता है, उसको डर लगता है। हम डर पे तो कह देते हैं डर रहे हैं, मगर उसको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नॉर्मल आइज को कुछ ही सेकेंड्स के अंदर अंधेरे में जाने पर भी दिखाई देता है, वो बायोकेमिकल साइकिल उतना एडजस्ट कर लेती है। और बार बार हमको इन्फेक्शन होते हैं, बार बार स्किन की बीमारी होती है, और वाइट पोर्शन बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो विटामिन ए के जो फंक्शन है वो मिल नहीं रहा है, तो प्रॉपरली बॉडी काम नहीं कर पाती है, ग्रोथ हमारी रुक जाती है, जो लंबाई मोटाई जो बढ़नी चाहिए, अंदर के वाइटल फंक्शंस जो पूरे होने चाहिए वो भी हमारे ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि विटामिन ए की कमी हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम ये पहचान सकते हैं कि विटामिन ए की कमी है, और वो हमारी चीज़ें आजकल हमारे देश में कई बारी जो विटामिन ए की ड्रॉप्स हैं वो हमारे जो इम्यूनाइजेशन होता है या वैक्सीनेशन जो दिया जाता है उसके साथ दी जाती हैं, तो काफ़ी कमी आई है, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी जो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बहुत पॉपुलर मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, एनीमिया। और हम समझते हैं कि सिर्फ पालक खा लेंगे तो अनीमिया हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ सर्वस पे, और आयरन से डेफिशिएंसी में अनीमिया जब दिखाई देता है तो उसके आयरन के जो स्टोर्स हमारी बॉडी में वो भी खत्म हो चुके होते हैं या कम हो चुके हैं। तो शुरुआत होती है जब आप बार बार कंप्लेन करते हैं हम थक गए, तो ये पहली पहचान है, या आपको भूख भी नहीं लगती है, थकान भी बहुत ज़्यादा आती है, और आपकी आंखें, आपका स्किन, आपका जीव वो पीला पड़ने लगता है, नाखून आपके पीले, तो जब ज़रूरत से ज़्यादा पीला हो जाता है लेमन, तब आप देख सकते हैं कि आपका लिवर का प्रॉब्लम है, मगर शुरू में लिवर का प्रॉब्लम बहुत बाद में आता है, पहले एनीमिया ही होता है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं करिए। और जगह जगह आपको बार बार लगता है कि कुछ जलन हो रही है, कुछ चुभन हो रही है, खासतौर से हाथ पैरों में, जिनको हम कहते हैं पिंस एंड नीडल्स, ऐसी आपको बेचैनी सी उंगलियों में लगती रहती है पैर में, और आपके नाखून या तो गड्ढेदार हो जाते हैं, बार बार टूटते हैं, स्ट्रांग नहीं रहते, और आपकी कार्य क्षमता जो है बहुत कम हो जाती है। तो ये छोटे से उदाहरण हैं जिनको देखकर आप मालूम कर सकते हैं कि हमारे को अनीमिया है, और अनीमिया अगर होगा तो हो सकता है आपके पेट में कीड़े भी हों, उससे भी हो सकता है। और बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, आपके अंदर ताकत नहीं बचती है और न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, या और न्यूट्रिएंट की कमी होने से भी आपको एनीमिया की शिकायत होती है। और मैं ध्यान आपको ये बताना चाहूँगी साथ में, दूध में हमारे आयरन नहीं होता है, तो दूध पीने से आपका एनीमिया नहीं ख़त्म होता है। आपको हरी सब्जियाँ के साथ आपको विटामिन सी लेना होता है, मगर उसके साथ कभी भी कोई टैनिन या चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, तभी एनीमिया की जो लेवल्स हैं हमारे ब्लड लेवल्स हैं हमको जनरली कंफर्म होता है। मगर ये जो हम सिम्टम्स बात कर रहे हैं इनको हम क्लिनिकल सिम्टम्स बोलते हैं, और उसको देख के भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्स वाई जेड पर्सन को एनीमिया है। तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन क्या करता है? सबसे पहला काम आयोडीन का है, जो हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है और वो जो थायरोक्सिन बनता है, जिससे हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म यानी कि अंदर की जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो हमारा हार्मोन काटता है, और उसको चलाने के लिए हमको आयोडीन की आवश्यकता है। और अगर आयोडीन सफिशिएंट नहीं है, बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है, प्रेग्नेंट वुमेन में प्रॉब्लम देखी गई है, और अभी अडल्ट में भी काफ़ी देखी जाती है। तो अब सुनिए वो कैसे पहचाने। आपके गले में दर्द भी हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हमारी काफ़ी बढ़ रही है, कुछ एरियाज में जो हिली एरिया हैं वो गर्दन में से बाहर लटकने लगता है, जिसको हम गोइटर के नाम से जानते हैं। अचानक आपका वजन बढ़ने लगता है, आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता, और बहुत सारे अगर प्रेगनेंसी में भी आयोडीन की कमी रहती है तो हो सकता है नवजात शिशु भी आपका ग्रो ना करे, या मेंटली रिटार्डेड हो, या उसके अंदर कोई स्पीच या हेयरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारे अंदर जो हाथ पैर चलाने की क्षमता है, जो हमारा ब्रेन सिस्टम है, वो ही डायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है। तो सिर्फ इतना पे ना रुकें कि आपका जब तक गला बाहर नहीं निकलेगा यानी कि कोई आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो उन्हीं जगहों पे होती है जब स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी होती है, वहाँ पर हम इसको करते हैं। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, मैं 2-3 का नाम लेना चाहूँगी, जहाँ पर इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का प्रयोग करके वहाँ पे तरह तरह से खाना दिया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, और फिर जो भी तरीका जिस भी न्यूट्रिएंट के लिए आवश्यक है वो किया जाता है। सबसे पॉपुलर हमारे इंडिया का है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी कि ICDS, मिड डे मील प्रोग्राम्स, उसके बारे में शायद काफ़ी लोगों ने सुना हो, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी को कंट्रोल करता है, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं ये हमारे नेशनल लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज पे चलते हैं, राउंड द ईयर चलते हैं, गांव तक भी जाते हैं। आंगनवाड़ी का अगर आपने नाम सुना होगा, या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इन प्रोग्राम के जो पैकेजेस हैं वो अलग अलग हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। और जैसे ICDS का एक प्रोग्राम है तो उसमें हमारा सप्लीमेंट्री फीडिंग दी जाती है, ग्रोथ मॉनिटर करी जाती है, इम्यूनाइज करा जाता है, रेफरल सर्विसेज कहते हैं कि अगर वहाँ पे हैंडल नहीं हो रहा है तो उसको आगे के हॉस्पिटल में भेज सकते हैं, और इसमें सभी बच्चों का इलाज किया जाता है, जन्म से लेके 6 साल तक के, फिर एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको एक मात्रा में जिसका प्रोटीन भी निश्चित है, एनर्जी भी निश्चित है, उतना खाना प्रोवाइड किया जाता है। उसी में जोर दिया जाता है हमारा कि हम आयरन फॉलेट की टैबलेट देंगे, डीवर्मिंग कराएंगे, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोग्राम भी आपका हैंडल हो जाएगा। जो आप पूरे यूनिवर्स में नहीं, खास तौर से यूनिवर्सल आयोडाइजेशन प्रोग्राम आपने सुना है, तो पूरे मार्केट में आपको आयोडाइज सॉल्ट मिलता है, तो उससे आयोडीन की डेफिशिएंसी कम होने में बहुत मदद मिलती है। तो उम्मीद है जो आज आपने जाना उससे आपको ज़रूर लाभ होगा, सिर्फ आपको शैक्षिक स्तर पर ही नहीं, आपके रोज़मर्रा के जीवन स्तर पर भी इसको अपनाइए, और अपने जीवन को ज़्यादा आप स्वस्थ बनाइए, और अपने पोषक स्तर को संवारने में आपको इनसे काफी मदद मिलेगी।